कमरे में धूप की आखिरी किरणें फर्श पर फिसल रही थीं। रम्या बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में फोन और चेहरे पर वही आधी छुपी हंसी। स्पीकर पर गगन की आवाज गूंजी, तो कल मिल रहे हैं, ठीक टाइम पर आ जाना। रम्या हंसी, हाँ हाँ देर नहीं होगी, लेकिन तू कुल्फी लेकर ही आना। तो भी ना, पढ़ाई छोड़कर बस कुल्फी और बातें, गगन ने छेड़ा। पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, रम्या बोली। और उसी वक्त दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। वो झक से सीधी बैठी, फोन पलंग के नीचे सरका दिया। हाँ माँ आ जाओ। शकुंतला कमरे में आई, चेहरे पर हमेशा की सख्ती और आवाज में वही ठहराओ। इतनी शाम को भी फोन हाथ में? नहीं माँ, पढ़ रही थी, रम्या ने जल्दी से कहा और किताब खोल ली। शकुंतला ने एक नज़र कमरे पर डाली, टेबल पर खुली किताब लेकिन पेन दूर पड़ा हुआ। पढ़ाई कर रही थी या बातें, उन्होंने पूछा। आवाज में सख्ती जरूर थी पर आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। रम्या ने बनावटी मुस्कान दी, माँ कल टेस्ट है, बस रिविजन चल रहा था। शकुंतला बिस्तर पर बैठ गई। रम्या मैं कल सुबह 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, सासू माँ बीमार हैं, बुलाया है। रम्या ने सिर उठाया, अरे इतनी जल्दी? आप जाएंगी तो घर में कौन रहेगा? श्यामली है ना, वो देख लेगी, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, शकुंतला ने सीधे शब्दों में कहा। रम्या ने होंठ से कोड़े, मैं ध्यान ही तो देती हूँ माँ। नहीं बेटा, शकुंतला बोली, ध्यान देती होती तो ये फोन तेरे हाथ से उतरता भी कभी। रम्या चुप रही, माँ की बातें चुपती भी थीं पर वो कुछ कह नहीं पाई। शकुंतला आगे बोली, तू समझदार है रम्या, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों से लोग क्या सोचते हैं पता है? रम्या ने धीमे से कहा, लोग क्या सोचेंगे माँ? यही कि लड़की पढ़ाई छोड़कर फालतू में उलझी रहती है। शकुंतला का स्वर सख्त था, तेरे पापा का सपना था कि तू कुछ बने, अब जरा सी ढील दिखा और बातें शुरू हो जाएंगी। रम्या ने नजरें झुका ली, मैं कोशिश कर रही हूँ माँ। कोशिश नहीं, ध्यान चाहिए, शकुंतला ने कहा। जब तक मैं नहीं हूँ फोन सिर्फ जरूरी बात के लिए इस्तेमाल करना, बाकी वक्त किताबों के साथ रहना। रम्या ने बेमन से सिर हिलाया, ठीक है माँ। शकुंतला उठी, तू समझती है ना मैं तुझसे नाराज नहीं, बस चाहती हूँ तू कुछ बने, पढ़ाई से ही तेरी जिंदगी बनेगी, बाकी सब बाद में। रम्या ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, माँ मैं जानती हूँ आप बस डांटती ऐसे हैं, अंदर से तो प्यार ही करती हैं। शकुंतला भी मुस्कुरा दी, हाँ प्यार ही करती हूँ, इसलिए चाहती हूँ तो किसी की मिसाल बने, मजाक नहीं। वो दरवाजे की ओर बढ़ी, अब किताब खोल और दिल लगाकर पढ़, मैं रात तक पैकिंग कर लूंगी। ठीक है माँ, रम्या ने कहा। शकुंतला बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ तो रम्या ने धीरे से फोन उठाया, गगन का मैसेज छिलमिला रहा था। तो कल नहीं मिलेंगे? रम्या ने कुछ सेकंड सोचा, फिर फोन साइड में रख दिया। खिड़की के बाहर आसमान धुंधला था, वो बुदबुदाई, माँ सही कहती हैं, शायद अब वाकई पढ़ने का टाइम है। उसने किताब खोली, पन्नों पर निगाह टिकाई, पर मन अभी भी वहीं था जहां गगन का मैसेज अधूरा पड़ा था। धीरे से मुस्कुराई, पढ़ाई पहले बाकी बाद में। फिर वो झुककर नोट्स लिखने लगी और कमरे में सिर्फ पन्नों की सरसराहट रह गई। कमरा आधा अंधेरे में डूबा हुआ था, टेबल लैंप की रोशनी बस एक कोने में टिमटिमा रही थी। अलमारी के दरवाजे खुले पड़े थे, कपड़े जमीन पर बिखरे, कुछ कुर्सी पर टंगे हुए। दरवाजे पर हल्की ठक ठक हुई। श्यामली धीरे से अंदर आई, हाथ में चाय की ट्रे थी, आंखों में वही झिझक और डर। अंदर से भारी करारी आवाज गूंजी, कहाँ मर गई थी तुम? श्यामली सकपका गई, जी वो चाय लेके आई थी, विश्वनाथ पलटकर बोला, चाय नहीं पूछी मैंने, ये पूछ रहा हूँ इतनी देर कहाँ थी? उसकी आवाज में इतना दबाव था कि श्यामली के हाथ हल्के कांप गए। कप से चाय छलक गई, उसने जल्दी से ट्रे नीचे रख दी। मैं शकुंतला दीदी की पैकिंग कर रही थी, उसने डरते हुए कहा। विश्वनाथ ने ठंडी नजर डाली, चेहरा तना हुआ, आवाज और नीची पर भारी, पैकिंग किस चीज की पैकिंग? वो कल अपने ससुराल जा रही हैं, श्यामली ने धीमी आवाज में कहा, कह रही थी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है। एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर अचानक धड़ाम, विश्वनाथ ने अलमारी का दरवाजा जोर से बंद किया। श्यामली डरकर 2 कदम पीछे हट गई। मैंने कहा था ना, विश्वनाथ की आवाज गरजी, वो वहां नहीं जाएगी, समझी? श्यामली कांपते हुए बोली, पर दीदी तो टिकट बुक कर चुकी हैं, मुझे मत सिखा के किसने क्या किया है। विश्वनाथ उसकी ओर बढ़ा, जिस काम में मेरी मनाही हो वो काम इस घर में कोई नहीं करता। श्यामली की सांसें तेज चल रही थी, वो नजरें नीचे झुकाकर बस खड़ी रही, आवाज मानो गले में अटक गई हो। विश्वनाथ ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा, चेहरे पर झुंझलाहट और भीतर कुछ अजीब बेचैनी थी। वो वहां क्यों जा रही है, उसने खुद से बुदबुदाया, फिर ऊंची आवाज में कहा, जाओ जाकर बोल देना, कोई जरूरत नहीं उस जगह पैर रखने की। श्यामली धीमे से बोली, जी पर अगर मैंने कुछ कहा तो वो नाराज हो जाएंगी। विश्वनाथ हंसा, वो हंसी ठंडी थी जैसे बर्फ के अंदर से आती हो। नाराज? शकुंतला मुझसे ज्यादा किसी से नहीं डरती, और अगर भूल भी गई हो तो याद दिला देना, ये हवेली अब भी मेरी है। श्यामली ने घबराकर सिर हिलाया, जी जी कह दूंगी। विश्वनाथ कुछ पल खामोश रहा, फिर अचानक शांत स्वर में बोला, अब जाओ और याद रख जो बातें यहां सुनी है किसी को मत बताना। श्यामली ने डरते हुए कहा, जी नहीं बताऊंगी। वो ट्रे उठाने झुकी ही थी कि विश्वनाथ कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली। वो वहां नहीं जानी चाहिए थी, उस जगह से सिर्फ मुसीबत लौटती है। शामली ने धीरे से सिर उठाया, पर उसकी नजरें विश्वनाथ के चेहरे पर नहीं टिक पाई। वो बस हल्का कांपती हुई बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर निकलते ही उसने एक लंबी सांस ली, जैसे कमरे के अंदर की हवा भारी हो, दम घोटने वाली। अंदर विश्वनाथ कुर्सी पर झुका बैठा था, अलमारी खुली, कपड़े अब भी बिखरे हुए। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, पर उनमें एक अजीब डर भी था, जैसे वो खुद किसी पुराने राज से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हो। वो बुदबुदाया, न जाने क्यों उस जगह जाने की जिद पकड़ी है उसने। अगर कुछ हुआ तो उसका अंजाम वही होगा जो पहले हुआ था। टेबल लैम्प झिलमिलाया और कमरे में फिर सन्नाटा छा गया।